ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है निरंतर योगी जीवन। आज की मुरली भी पूरा योग के बारे में थी, योग की महिमा, बाबा ने योग का महत्व बताया पूरी मुरली में, क्योंकि योग के द्वारा ही हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। योग के द्वारा हम स्वयं का तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन योग के द्वारा ही विश्व का भी परिवर्तन होगा। योग के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हम वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हैं। योग के द्वारा ही हम विकारों का सामना कर सकेंगे, विकार जीत बन सकेंगे। जिसके पास योग की अग्नि है, योग की अग्नि के द्वारा हम विकारों की अग्नि को बुझा सकते हैं। जिसके पास योग की अग्नि है वही विकारों की अग्नि को बुझा सकता है। योग के द्वारा ही हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने योग के द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया उसको ये संसार और सारी संसार की बातें फीकी लगेगी, वो कभी भी आकर्षित नहीं हो सकता। संसार में भी किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होगा, कोई भी वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर सकती। कम जब वो योग का अनुभव करता है उसे ऑटोमेटिकली वैराग की स्थिति आती है, साक्षीपन की स्थिति आती है योग के द्वारा। इसे अभी गीत भी बड़ा अच्छा सुन रहे थे, योगी जीवन कितना प्यारा, और वही योगी जीवन भविष्य में देवी देवता बनता है। इसलिए वर्तमान समय संगम युग में हमें सबके प्यारे बनना है, देवी देवता बनना है, मुंच पद प्राप्त करना है, तो ये योग का सब्जेक्ट हमें पक्का करना है। और जिन्होंने योग के सब्जेक्ट को पक्का किया, देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति अपने अपना सकेंगे। कोई भी मुरली उठाओ, बाबा रोज कहते बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। ये याद का सब्जेक्ट बाबा क्यों पक्का कराता है? क्योंकि इसके बिना हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने खुद अपने जीवन से देखा, जिन्होंने योग का सब्जेक्ट अच्छा किया बाकी तीन सब्जेक्ट उसके अपने आप अच्छे हो जाएंगे। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था हम दो शब्द भी किसी को बोल नहीं सकते थे, निकलता नहीं था अंदर से, लेकिन जैसे योग के ऊपर अटेंशन दिया वाणी सेवा भी अपने आप निकलती है योग के द्वारा। क्योंकि योग का सब्जेक्ट अच्छा करने से जो वाणी निकलेगी अनुभव वाली वाणी होगी। योग के द्वारा धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा अपने आप। और जिन्होंने योग की अनुभूति की है सेवा तो उसके पीछे पीछे अपने आप आएगी। इसलिए हमें योग के सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है। योग के द्वारा हम अपने जीवन को कौड़ी से हीरे के समान बना सकेंगे। योग के द्वारा ही वाणी में बल आता है, वाइब्रेशन फैला सकेंगे, जन्म जन्मांतर के विकर्म को विनाश कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जिन्होंने योग को अपनाया, जिसके पास योग बल है, उससे कभी भी विकर्म नहीं होंगे। उसकी हर इंद्रिया उसके ऑर्डर प्रमाण चलेगी। योग की महिमा अपरंपार है। लेकिन वो योग लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी योगी जीवन बनाने के लिए योग की विधि को समझना जरूरी है। अजकयों का योग के सब्जेक्ट के तरफ थोड़ा सा अटेंशन नहीं जाता। कई कहते योग मेरा लगता ही नहीं है, योग का अनुभव होता ही नहीं है, योग का हम ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, जैसे स्कूल कॉलेज में जिन बच्चों का इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, या जिसका मैथ्स अच्छा है अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारीज में जिन्होंने योग का सब्जेक्ट को अच्छा किया वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं योग के सब्जेक्ट को डोंट केयर नहीं करना, लेकिन उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सारे परिवर्तन का आधार है योग। वैसे तो आपका योग लगता नहीं है, ऐसा नहीं है, लगता है, सबका योग लगता है। योग लगता है तब तो आप सेंटर पर आते हैं, योग लगता है तब तक आप बैच पहनते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, मधुबन में आते हैं, किसको मिलने के लिए आते हैं? तो बिना योग लगता है, लेकिन वो योग पावरफुल विधि पूर्वक शक्तिशाली हमें बनाना है। और जिन्होंने योग का सब्जेक्ट तो अच्छा किया, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण अपने आप आएंगे। योग के सब्जेक्ट का रिजल्ट है दैवी गुण, दैवी शक्तियां। अगर दैवी शक्ति आपके पास नहीं है, गुण नहीं है, आपके योग के सब्जेक्ट में एक थोड़ी कमी है। इसलिए हमें समय निकाल करके तपस्या करनी है, साधना करनी है, योग करना है। जितना योग का अभ्यास करेंगे उतना हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। सिवाय योग के आत्मा की बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। और जिनकी आत्मा की बैटरी संगम युग में अच्छी तरह चार्ज हो जाएगी उतना पद ऊंचा होगा। सत्ययुग में जो आत्मा की बैटरी 100% चार्ज चाहिए। तो योग लगाने के लिए दो चीजें मुख्य रूप में काम आते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। और योग एक दो है, जैसे एक कर्म योग है, दूसरा बैठ करके योग है। तो हमें इसमें भी दोनों भी कला सीखनी है, कर्म में योग लगाने की कला भी सीखनी है और बैठ करके योग लगाने की कला भी सीखनी है। क्योंकि जो कर्म में योग नहीं करता, बुद्धि बाबा में नहीं लगती, तो कर्म में हम जो भी देखते हैं सुनते हैं ये सब बातें बैठ करके योग के समय याद आएगी। इसलिए हमें कर्म में भी योग करना है और बैठ करके जो बाबा ने मुकरर टाइम दिए हैं, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, नुमा शाम का योग, कुछ ट्रैफिक कंट्रोल्स, या हमें समय निकाल करके बैठना है। और जो बैठ करके योग लगाता है उसका कर्मों में अपने आप योग लगेगा। ये एक दूसरे के प्रति सहायक है। जिन्होंने कर्म में योग किया उसका बैठ करके योग अच्छा लगेगा, और जिन्होंने बैठ करके योग अच्छा किया उसका कर्म में योग लगेगा। कर्म में योग लगाने से विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन विकर्म नहीं होते। हमारे से नए विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि कर्म में योग युक्त तो बुद्धि होने से, बुद्धि बाबा की तरफ जाने से कर्मों में हम आकर्षित नहीं होते। घाटा हुआ, फायदा हुआ, साक्षी अवस्था रहती है, और जो साक्षी अवस्था में योग में बैठता है वो कर्म में जो देखा सुना, घाटा हुआ फायदा हुआ, वो संकल्प नहीं चलेंगे। क्या देखा क्या सुना वो संकल्प नहीं चलेंगे, फिर बैठ करके योग अच्छा लगेगा। इसलिए कर्म में योग करना है, जिसे बैठ करके योग हमारा अच्छा लगेगा। तो योग लगाने के लिए, योगी जीवन बनाने के लिए हमें दो चीजें, मन और बुद्धि, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? बुद्धि है कैमरा, मन है टीवी। जैसे कैमरे के सामने जो चीज होती है वो चीज किस में आती है? टीवी में आती है। तो बुद्धि जिस चीज को देखती है वही मन में थॉट चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आंखें जो देखते हैं वो हमारे मन में विचार चलते हैं, नहीं है। हमारी बुद्धि जिन चीजों को देखती है, ध्यान चीज जिनको देखता है, वो मन में विचार चलते हैं। इसलिए बुद्धि के ऊपर एक बाबा के सिवाय, ज्ञान के सिवाय किसी का भी प्रभाव ना हो। ये बाबा जो की जो मुरली हम क्यों सुनते हैं बच्चे, ये सारा इन आंखों के द्वारा जो देखते हैं वो विनाश होने वाला है, ये सब समाप्त होने वाला है, अब समय पूरा हुआ है, अब तुमको घर जाना है, ये सब बातें बाबा क्यों सुनाता है? क्योंकि ये सुनने से हमारी बुद्धि यहां से हट जाते है, उपराम हो जाते है, बुद्धि कहीं फंसती नहीं। योगी जीवन बनाने के लिए बुद्धि कहीं न अटके न लटके न भटके न चटके, तब जाकर के बुद्धि जब यहां से निकलेगी ऊपर जाएगी तब जाकर के हमारे योग लगता है। तो बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। अब कैमरा वही लगा हुआ है और टीवी के दृश्य को हम कहते हैं ये दृश्य क्यों आ रहे हैं, इसी तरह हमारी बुद्धि वहां है और कहते हैं मेरे मन में ये विचार क्यों चल रहे हैं। इसलिए जहां भी आपको जाना है, परमधाम में जाना है, तो पहले आप बुद्धि के सामने परमधाम का दृश्य निर्माण करो, क्योंकि बुद्धि विजन की भाषा जानते हैं, बुद्धि दृश्य की भाषा जानते हैं। जैसे बुद्धि के सामने दृश्य होगा वो मन में विचार चलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बुद्धि के सामने कोई दृश्य नहीं लेते, सीधा योग में बैठेंगे शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। समझो किसी को कहीं जाना है, किसी ने कुछ बोला है, उसका बुद्धि के ऊपर प्रभाव है, और हम आकर के योग में बैठ गए, विचार देना शुरू किया मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। फिर कुछ समय के बाद जब विचार देना बंद करेंगे, जो बुद्धि के सामने जहां जाना है, किसी ने कुछ बोला है, वो दृश्य सामने है, उसके विचार आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम सोचते ये क्या हो गया, मैं तो योग में हूं। फिर दोबारा विचार देंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। फिर कुछ समय के बाद फिर वही विचार आएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बुद्धि को सेटिंग नहीं किया। इसलिए बुद्धि का बहुत बड़ा योग में महत्व रोल है। मन का भी बॉस है बुद्धि। मन का भी बॉस कौन है? बुद्धि। बुद्धि मालिक है, मन उसका नौकर है। अब इतना दिन हमें ज्ञान था ही नहीं, दिव्य बुद्धि थी नहीं, तो इतना दिन किसने चलाया? मन ने चलाया। जैसे अगर कोई मालिक नहीं होता है उस समय नौकर सारा कारोबार चलाता है। जब मालिक आए फिर भी नौकरी चलाएगा, तो इसीलिए अब जो भी कुछ है बुद्धि के द्वारा हमें कार्य लेना है। बुद्धि एक प्रकार की गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाई जाते है बछड़ा उसके पीछे पीछे जाता है, गाय यहीं है बछड़े को मार पिटाई करके दूर भगा वापिस आएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, बुद्धि यही है और मन को कहते जाओ तुम परमधाम में जाओ, कोशिश करके भगाने की कोशिश, वो मन जाता ही नहीं, वापिस आता है गाय के पास, बुद्धि के पास आता है। इसलिए पहले ही बुद्धि को भेजना है मन उसके पीछे, जिसको ही बाबा कहते हैं जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। बुद्धि है वीडियो, मन है आड़ियो, आड़ियो और वीडियो जब दोनों इकट्ठे काम करते हैं तब योग में एकाग्रता आती है। दोनों एक साथ में काम करें तब एकाग्रता आते हैं और उसी एकाग्रता में हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन कभी कभी बुद्धि के ऊपर क्लियर पिक्चर्स नहीं आते हैं, स्पष्ट परमधाम वगैरह नहीं दिखता। इन सब का कारण क्या है, सारा दिन मन में निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार चलते हैं, उस व्यर्थ विचारों की धूल बुद्धि के ऊपर आते हैं। इसलिए सारा दिन हमारे संकल्प समर्थ रहे, और ये कब रहेंगे, जब कर्म में योग युक्त स्थिति होगी, कर्म में बुद्धि बाबा की तरफ होगी। बुद्धि देखती है मन, मन उसके बारे में सोचता है। ये बुद्धि क्या चीज है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते आपको समझो। इसी समय कहा कि आप मधुवन में ऊपर पांडवन में ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं, ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं पांडवन में, और वहां से ओम शांति भवन के अंदर आप जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़कर के ऊपर बीच के गेट से जा रहे हैं। जैसे अंदर गए एक बहुत सुंदर सोरख का मॉडल बना हुआ है वहां, उसको देख करके आप अंदर एंट्री किया, अंदर बाबा का बीच में बहुत अच्छा ब्रह्मा बाबा का फोटो है, साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, एक साइड पर कृष्ण लीला का चित्र है। आप ओम शांति भवन देख करके नीचे पांडवन में आए गेट पर, वहां एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है, वहां से आप शांति स्तंभ के पास गए, शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, उसमें लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वहां से आप धीरे से बाबा के झोपड़ी की तरफ जा रहे, बाबा के झोपड़ी की तरफ एक झूला है बना हुआ, वहां दो मिनट में बैठ करके बाबा के झोपड़ी में गए। जैसे झोपड़ी में गए एक बाबा उसमें एक पत्र लिखते थे, वो गदीला रखा हुआ है, तकिया रखा हुआ है जिसमें बाबा बैठ करके बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप जब बाबा का रूम है या नीला सा ट्रांसलेट है, एक खटिया भी रखी है जब बाबा निवास करते थे, उसी रूम में पहुंचते हैं। वहां से आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क में वहां एक सीमेंट का बना हुआ ओम का ये है, वहां से गुरु शिखर के तरफ देख रहे हैं। वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सरोवर किचन कॉम्प्लेक्स के सामने है, वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, शांतिवन में तपस्या धाम गार्डन में खड़े हैं। वहां से पीछे मुड़ करके एक पहाड़ी पर देखा जहां ओम शांति लिखा हुआ है, ये सब दिखाई पड़ा। ये किसने देखा, आंखें तो इधर हमारे तरफ देख रहे हैं लेकिन वो कौन देखा, बुद्धि। इसको कहते बुद्धि, माना आपका बुद्धि अभी इधर लगी थी, उसके लिए अपने आंखें भी बंद नहीं की, आंखें तो खुली थी। इसी तरह हम योग में बैठते भी यहां बैठ करके, यहां से जैसे अब मैं आत्मा शरीर से निकल गया, बुद्धि के द्वारा निकल रही हूं, चांद सूरज तारंगन के पार जा रही हूं, वहां ब्रह्मापुरी में जाते हैं, ब्रह्मा बाबा खड़े हो जाते हैं, बाबा ने मुझे गले लगाया, ये हमने वो देखने का प्रयास करना है, अनुभव करना है और उसी से आपका योग में बुद्धि देखती रहे और मन उसके बारे में सोचता रहे और तब जाकर के योग में अनुभव होगा। हम देखते कम है, इसको केवल सोचते हैं और इसके कारण ज्यादा समय टिक नहीं सकते। तो ये दोनों चीजों का हमें योग में अच्छी तरह प्रयोग करना है, बुद्धि और मन का। एक योग की क्या विधि है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल को चार्ज करते कैसे करते, चार्ज कैसे चार्ज करते, उसको कहीं रोड पर डालो चार्ज होगा, कहीं बगीचे में चार्ज होगा, उसको प्लग के पास लाया जाता है, जहां बिजली का कनेक्शन है वहां मोबाइल को ला करके रखते। मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं, उसके अंदर की बैटरी चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह ये शरीर हमारा क्या है, मोबाइल है, और आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो हमें आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, और इसमें योग में कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आती, ताकत किस में आती है, आत्मा में। तो हमें अपने शरीर पे मोबाइल को बाबा ने पूरी भारत में तो क्या सारे विश्व में प्लग के पॉइंट बनाकर रखे है बिजली के। कौन सा प्लग, ये सेंटर्स क्या है, सेंटर्स है, पाठशाला है। तो बाबा की पावर्स हर जगह पर पहली में, तो हमारे पास जो नजदीक प्लग का पॉइंट है बाबा का, तो हमें दिन में एक बार वहां जाने की जरूरत है, वहां जाकर के क्लास में बैठने की जरूरत है। कई कहते हम घर में करें, भले घर में करो, लेकिन दिन में एक बार हमें क्या करना है, उस प्लग के पास जाना है। और केवल जाने से भी नहीं चलेगा, लेकिन वहां जाने के बाद भी मन बुद्धि कहां लेके जानी है, बाबा के पास। इसी तरह हमें भी अपने शरीर को एक बार वहां प्लग के पास लेके जाना है, और मन बुद्धि के तार कहां लगानी है। हमने तो शरीर को लेके जाकर क्लास में पटकाया और मन बुद्धि घर की बातें याद कर रहे, घर कोई और बातें याद करे, तो फिर कहते पता नहीं हमारी बैटरी चार्ज होती ही नहीं। इसीलिए सेंटर्स भी जाने के बाद भी हमें ध्यान बुद्धि कहां लगानी है, मन और बुद्धि कहां लगानी है, ऊपर बाबा के पास, जहां बाबा है। और साथ में केवल तारे डालने से भी नहीं चलेगा, दोनों भी तारे लगानी है। जैसे मोबाइल को प्लग के पास लाया लेकिन एक तार डाली दूसरी बाहर है, चार्ज होगा, दोनों भी तारे लगानी पड़ती है। इसी तरह हमें भी मन और बुद्धि ये दोनों भी तारे बाबा के साथ जोड़नी है। अच्छा, दोनों तारे लगाई लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह हम भी आकर के क्लास में बैठ गए, मन बुद्धि लगाई लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे ही नहीं, डो के बैठे बस, तो कैसे चार्ज होंगे। इसीलिए स्विच चालू करना, स्विच अर्थात बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। अभी मुझे लगता है 4-5 दिन पहले कितना सुंदर बाबा ने, बाबा से कैसी बातें करो, ये बाबा ने उस मुरली में बताया था। ओ मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा हमें कितना ज्ञान नॉलेजफुल बनाया, कितनी बाबा से बातें करो, केवल चुप नहीं बैठो। क्योंकि जब तक बाबा से बातें नहीं करेंगे तब तक बाबा से स्नेह प्यार नहीं बढ़ेगा। इसीलिए स्विच चालू करना जरूरी है। कुछ उपकार है बाबा के हमारे पर, हाँ है उपकार, अगर एक एक उपकार को भी याद करो आंखों से आंसू आएंगे। इतना बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है और लोग क्या करे, थूक के जा रहे, नाक पकड़ करके जा रहे, कोई उठाने की तो छोड़ो, उसके तरफ कोई देख भी नहीं रह रहा, वो तो गिर रहे हैं बिल्कुल, चिल्ला रहे हैं, कई दिनों से पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति आया, देखा ये गटर में गिरा हुआ है, तो वो सीधा उसके पास जाता है और वो ये नहीं सोचता कि इसकी गंदगी मेरे पास मेरे को लगेगी, अगर मैं गटर में नीचे उतरूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने कुछ नहीं सोचा, सीधा वहां उतरा गटर में और वहां से उसको निकाला। सबसे पहले उसको क्या क्या आपने गले लगाया, उसके आंखों के आंसू पोंछे और उठा करके सीधा ला करके एसी गाड़ी में रख दिया। ये नहीं सोचे मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, और ये भी नहीं सोचना कि अब जाओ तुम यहां से अपने घर में जाओ, ये भी नहीं कहा। घर में लाया, उसको निलाए अपने हाथ से, निला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे, दवाई पिला रहे, तो क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहे इन्होंने मुझे जीए दान दिया, मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, स्वप्न में भी नहीं भूलेगा। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे। किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, तो हर जन्म में हमें कितने मम्मी पापा, कितने बहन भाई ने, कितने हमें रिश्तेदारी मिले, उठाया किसी ने? उठाने के तो छोड़ो और ये लात मार करके गिराया, हमने शादी की तुमको भी करनी पड़ेगी, और ये गिरा दिया। लेकिन परम धाम कहां? परम धाम वहां से बाबा आया, कहां हमारी गली, कहां हमारा गांव, कहां रहते थे, और वहां से आकर के आपके खातिर, आपको उठाने के लिए कितने बहनों को सरेंडर किया, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किया, ये ज्ञान आपके पास ऐसे नहीं आया, कितनी भी उसके पीछे मेहनत है। खास मुझे ये ज्ञान देने के लिए बाबा वहां कैसे पहुंचा? जब योग में बैठ करके इन बातों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे, नींद कहां आएगी? हम कुछ नहीं, चुप ऐसे बैठ जाते हैं। इसीलिए जो योग में जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। वहां से हमें गटर से निकाला, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे भेद खोल दिया। मैं कौन हूं, तुम कौन है, तुम मेरा बच्चा हो, कितना प्यार से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक निलाया, इतने गंदे हो गए थे, और अभी भी टीचर बनकर के रोज परमधाम से आकर के पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बनकर के हर पल आपके साथ में है। अगर एक दिन भी बाबा साथ में ना होता, इस नरक में, इस विकारी दुनिया में पवित्र कहां रह सकते? भले दिखता नहीं आपके पास, लेकिन वो हर पल आपके साथ में है। एक गीत है ना हमारा, कहीं यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। अगर बाबा ना होता तो आप, जैसे जिन्होंने द्वापर में भी कई साधु संतों ने क्या किया, घर बार छोड़ करके पवित्र रहने के लिए गए, नहीं रह पाए, वापिस आए। उस समय तो इतना वातावरण खराब नहीं था, लेकिन आज कैसे कैसे फिल्में, कैसे कैसे फैशन, कैसा विकारी वातावरण, भोजन कैसा कैसा, ऐसे में आप घर में रहते हो भी पवित्र रह रहे हैं, इसका मतलब कौन साथ में? बाबा साथ में है। इसलिए हर पल सदगुरु बनकर के साथ में है, मित्र बनकर के मदद करता है। तो ऐसे जब योग में बैठेंगे, उस बाबा के उपकारों को याद करेंगे, तब जाकर के स्थिति पावर। इसलिए स्विच चालू करो और याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, इस कार्य में मददगार बनेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये दिव्या, ये कौन है जो 5000 साल पहले जिन्होंने परमात्मा के कार्य में मददगार बने थे, उन लोगों की अभी भी ये पूजा कर लोग कर रहे। तो इसलिए उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बना रहा है उसको याद करो, ये है योग। और जब योग में 1 घंटा आधा घंटा तक ये बात हो, तब हमारी ये आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, शक्ति आती है, आत्मिक स्थिति बन जाती है। और जिन्होंने योग में आत्मिक स्थिति बनाई, चार्ज की, तो सारा दिन जब चलता फिरता तो योग में अनुभव किया, वो अनुभव उसको परमधाम खींचता है, उसके बुद्धि को, बुद्धि कहीं भी जाएगी नहीं। स्विच चालू किया, अच्छा स्विच चालू किया, दोनों तारे डाली, लेकिन तार को प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज होगी। मैं मोबाइल की बात ले, वो बैटरी की चार्ज की बात बता रहा हूं, योग की विधि। अब डालते रहेंगे तारे, निकालते रहेंगे, चार्ज होगा? इसी तरह कई क्या करते हैं, समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, चलो आज शाम की इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, जाते थे हम लेके जाएंगे, ये तो दुकान वाला तो यही है। आए सेंटर पर, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ। तार प्लग से निकल गई, फिर कह के ठीक है उसके सब प्लास्टिक का झोला तो हो गए, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने उसको बंद किया था या कम किया था, बंद किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ला उसके लिए खमन ढोकला बनाऊं, लेकिन तो उसका मटेरियल तो है ही नहीं, चलो बाद में देख लेते हैं, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, उसका टाइम जब हम योग में बैठते तो क्या करते हैं, मन बुद्धि के तार को डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ये अटेंशन की कमी, जैसे कोई मेहमान बहुत बड़ा आया है और मेहमान माँ से बात कर रहे, कुछ जरूरी बातें घर की चल रहे और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी मेरा, ठहर जाओ बाद में दूंगी, मेरी मेहमान से बात करे, बच्चा तो रोज का है। इसी तरह बाबा इतना बड़ा मेहमान, उसे हम बात कर रहे, 5000 साल के बाद आया है और जब उसे बात करे बीच में ये सब्जी खाना ये क्या है। इसलिए योग में बैठते समय अटेंशन से बैठना है, ये तो रोज का करना ही है, लेकिन योग में हम बैठते तो योग में बाबा से रूरवान करना है, बातें करनी है। और जब हम ऐसा योग कर, कई तो क्या समझते जब हम योग में बैठते हैं मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं, कई तो ये भी सोचते हैं, क्योंकि कई बार पीसअप में टीवी में कई यूट्यूब में कई क्या देखते हैं, योगी योग में बैठता, जैसा योग में बैठा एक बिंदी निकली हूं घूम करके ऊपर गई लेकिन हम जब बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं। तो इसलिए कई बोलते हमारे योगी नहीं लगता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मधुवन की यात्रा करके आए, कि आत्मा निकल करके गई थी, गई थी। अगर आत्मा शरीर से निकल जाएंगे तो शरीर लुढ़क जाएगा तुरंत। जैसे मोबाइल का एग्जांपल बताया अभी, तो जब मोबाइल का एग्जांपल दिया तो जब तारे डाली स्विच चालू किया तो क्या बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई थी? मोबाइल चार्जिंग करते समय बैटरी निकलती है तो बैटरी कहाँ रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं। तो क्या गई चार्जिंग करने के लिए क्या जाते हैं? वो अंदर की तारे जाती है, वो भी ऊपर से कोटिंग होता है, वो दिखाई नहीं पड़ती, तांबे वाली छोटी सी तारे वो जाकर टच करती है। इसी तरह मन और बुद्धि जाकर के परमात्मा से टच करते हैं और उसी से हमें पावर मिलती है, बल मिलता है, मन बुद्धि। लेकिन कौन सा मन जाएगा, कौन सी बुद्धि जाएगी, ये महत्व का है। जिसकी बुद्धि क्लीन है, क्लियर है, जिसका मन पॉजिटिव है, हल्का है, हल्का मन ऊपर जाता है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। सारा दिन हम निगेटिव सोचते, ये क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों किया, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव वाला मन थोड़ी ऊपर जाएगा। इसलिए जब हम ऐसा योग का अनुभव करते हैं तो सारा दिन हमारा योगी जीवन बहुत आकर्षित रहता है। ये जो विकार है, विकार हमारे से दूर रहते हैं। जैसे जिस घर में लाइट रहती है वहां भूत नहीं रहता, इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां कोई भी विकारों का भूत नहीं रहेगा, सारे भूत भाग जाएंगे। भूत किसे डरता है? लाइट से डरता है। इसलिए हमें योग को विधि पूर्वक करने की जरूरत है। पहले विधि पूर्वक, ये विधि आपको बताए सिंपल सा, इसमें कोई माताएं भी समझ सकते, बोली बोली माताएं भी। आजकल सबके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल मतलब योग कैसे लगाने, मतलब क्या बस तार आकर के बैठना, दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना, तार को बार बार डालना निकालना नहीं, और बाबा के उपकारों को याद करना, प्राप्तियों को याद करना, सब तब हमारा योग का अनुभव होगा। और हमारा रोज का योग 2-3 घंटा, 4 वैसे तो बाबा तो कहता है 4 घंटा, 8 घंटा बोलता है, 4 घंटा बैठ करके, चलो 8 घंटा 4 घंटा बैठ करके नहीं भी होता तो कम से कम 3-2 घंटा तो कर सकते हैं, अमृत वाला 1 घंटा। क्लास के पहले हमें हर एक को आकर के आधा घंटा योग करना है। लेकिन हम कई सेंटर पर जाते हैं आजकल, कई भाई बहने क्लास के पहले योग में नहीं आएंगे, पहले 5 मिनट पहले आएंगे, 10 मिनट पहले आएंगे, उसके बाद सीधे मुरली सुन के जाते हैं। अगर केवल हमने मुरली सुनते हैं तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आती। जो ज्ञान है वो धारणा में नहीं आता, इसीलिए क्लास के पहले योग बड़ा जरूरी है। बीज डालते हैं खेती में, उसे पहले क्या करते हैं, उसको हल चला करके खेती को तैयार करते हैं, बाद में डालते हैं। इसी तरह में क्लास के पहले भी हर एक को क्या करना है, थोड़ा सा समय निकाल करके योग करना जरूरी। नहीं तो जो क्लास के पहले योग नहीं करते उसका टाइटल क्या है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब आंखों से आंधा नहीं, पता ही कि रॉन्ग है, पता ही कि नहीं करना चाहिए तो भी वो कर लेता है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसलिए हमें क्लास, और आजकल तो बाबा कहते हैं सेंटर को चैतन्य में मंदिर बनाओ। तो वो मंदिर कब बनेंगे, जब संगठन में हम योग करेंगे। संगठन का योग कब मिलता है, क्लास के पहले मिलता है। बाकी तो हम घरों में अमृत वाला घरों में करते हैं, नमाशाम घरों में करते हैं, और एक लकड़ी, लकड़ियां सारी जल रहे हैं, एक गीली लकड़ी है, उस गीली लकड़ी को उसमें डाल दो, वो भी क्या हो जाएगी। अगर किसी का योग नहीं लगता, संगठन में आकर के योग करो तो अपने आप योग लगेगा। इसीलिए हमें क्लास के पहले योग, रात को सोने से पहले थोड़ा सा 15-20 मिनट योग करना है, नुमा शाम का योग, बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल चलते हैं उसमें भी, अगर ये टोटल तो गिनेंगे तो 2-3 घंटा तो हो ही जाएगा। कहने का मतलब मैं बैठ करके योग करने का क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है, और तब जाकर के जो बाबा जितनी भी धारणा बताता है, श्रीमद बताता है, वो हमारे धारणा में आएगा, हमारा जीवन एक दुनिया वालों से आकर्षित नजर आएगा। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं भी जरूरी है। अगर हम योग लगाना चाहते हैं, योगी जीवन बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ धारणाएं। सबसे पहली धारणा है हमें आत्मिक स्थिति में रहने का भी पुरुषार्थ करना है, बार बार स्मृति करना है मैं आत्मा हूं। योग में बैठते समय अगर आत्मिक स्थिति में नहीं बैठेंगे, केवल सोचते रहेंगे, तो भी योग का अनुभव नहीं होगा। एक भाई ने मुझे कहीं बाहर गया था तो क्वेश्चन पूछा था, बीके भाई था, कहता है भाई साहब कोई बर्फ के साथ पास जाता है तो क्या अनुभव होता है, ठंडा का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है। कोई उसके लिए कॉमेंट्री करने की जरूरत नहीं, ओ कितना ठंडा है, कितना बोलने की जरूरत नहीं। कोई अमीर हो गरीब हो सबको अनुभव होगा। अगर कोई गर्मी के पास जाएगा, आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा, आग के पास जाएगा तो गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। वो भाई कहता है मेरे को, लेकिन कहता है मैं, कोई अगर बाबा के पास जाकर के बैठेगा, सर्वशक्तिवान के पास, क्या अनुभव होना चाहिए, शक्तियों का, आनंद का। कहता है मैं मधुन में आया था, डायमंड हॉल में आया था, और मैं 4 घंटा वहां बैठा, और बहनों से बोल करके मैंने क्या किया, बिल्कुल स्टेज के नजदीक जगह लिया था, गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, 3-4 घंटा बैठा था मैं, बिल्कुल सामने बैठा था, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे हुआ। उसको थोड़ा डाउट आया, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उसको दिया, अगर एक बहुत बड़ा चुंबक है, उस चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बड़ा पावरफुल है, लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के, बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उस कपड़े के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा, खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़ों को कहां डाला है, कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा सर्वशक्तिवान है, अगर बाबा के सामने बैठना है, अगर हम देह बांध के अंदर, कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, ये कई प्रकार के ये देह बांध उसके सामने बैठेंगे, कहां खींचेगा। इसलिए आत्माभिमानी होकर के बैठना। पहले जब मधुवन में शुरू में मधुवन में आना होता था तो दादियां चार्ट मंगवाती थी, अगर ये एक साल में पक्का ज्ञान में रोज मुरली सुनता है उसको अलाव है, जो अमृत वाला करता है उसको ही अलाव है, जो पवित्रता का पालन किया है उसको ही अलाव है, खान पान की धारणा है उसको ही अलाव, क्योंकि ये सब चीजें करने से थोड़ा सा आत्मिक भान बनेगा, और जो आत्मिक भवन बना करके यहां आकर के बैठता है तब उसको योग की अनुभूति होती है, बाबा की अनुभूति होती है। इसलिए बाबा के सामने बैठते समय आत्माभिमानी स्थिति चाहिए, अगर आत्माभिमानी स्थिति नहीं वो योग की अनुभूति। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो और फिर क्या करो मुझे याद करो। तो परमधाम में जाना है तो हमें ये चप्पल को यहां उतार करके, देह की चमड़ी को उतार करके जाना है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, चप्पल बाहर उतारते हैं फिर मंदिर में जाते हैं, इसी तरह परमधाम चैतन्य मंदिर है बाबा का, तो वहां जाना है तो इस शरीर रूपी चमड़ी को उतार करके फिर जाना है। अत्तम अभिमानी सिवा वाला ही निरंतर योगयुक्त बन सकता है। तो ये आत्म अभिमानी बनने की हमें मेहनत करनी है, बार बार स्मृति रखते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इसको देख रहे मैं आत्मा हूं। और आत्म अभिमानी वाला कभी भी किसी के तरफ आकर्षित नहीं होता, शिवाय आत्म अभिमानी वाला शिवाय परमात्मा के कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। तो इसलिए योगी निरंतर योगी जीवन बनाना है तो ये आत्मिक स्थिति की धारणा बनानी है। दूसरी बात है अगर हमें निरंतर योगी बनना है इसलिए पर चिंतन पर दर्शन किसी के दोष देखना पर चिंतन से मुक्त रहना यह जरूरी है। अभी भी बाबा की मुरली चली ना, किसी के दोष नहीं देखो, कोई गिरा हुआ है उसको शुभ भावना दो, उसका सहयोग दो, ये नहीं कि जो चल रहा है उसको चलते हुए को गिराना, ऐसा बन सकता है। क्योंकि परचिंतन करने वाला परदर्शन करने वाला उसको परमात्मा कैसे प्यार करेगा। इसलिए हमें हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक के अंदर का विशेषता अपनी अपनी है। इसलिए मुझे सबके क्या करना है, अच्छाई देखने गुण देखने परचिंतन से मुक्त बनना है। अब समझो किसी के घर में जाओ उनके बच्चे भी बैठे बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा तो ठीक नहीं नालायक है ऐसा है वैसा है बुराई करेंगे, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे आप कितने अच्छे, बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ तुमने मेरे बच्चों की ग्लानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे वो भाई ऐसे वो ऐसा होता है वैसा होता है, सारा दिन परचिंतन किया और शाम को योग में बैठेंगे मीठे बाबा प्यारे बाबा शांति के सागर दही के सागर, बाबा कहेगा पहले तुम यहां से भाग जाओ तुमने मेरे बच्चों के ग्लानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसलिए कई बार बाबा मुरली में धारणा वाली बातें बताते हैं, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परिचिंतन नहीं करो, ये सब बातें किस लिए योगी जीवन बनने के लिए धारणा ही है। लेकिन हम न चाहते भी क्या करते हैं, किसी के दोष देखते हैं अवगुण देखते हैं, खुद देखते तो है लेकिन वर्णन भी करते हैं दूसरों को भी सुनाते हैं। जो किसी के दोष देखता है अवगुण देखता है वो शुभ भावना नहीं रह सकता, उसकी वृत्ति निगेटिव बन जाती है, उसका दृष्टि निगेटिव बन जाती है, वायुमंडल निगेटिव फैलेगा, योगी जीवन कैसे जिए। इसलिए हमें जैसे बाबा सबके लिए रहम दिल है वैसे हमें भी ये पर चिंतन की बातों से बचना, सबकी अच्छाई देखना, सबका अपना अपना पार्ट है ये समझ करके साक्षी होकर के रहना, ये धारणा करनी। तीसरी बात है अगर हमें निरंतर योगी जीवन बनाना है उसके लिए बाबा जो भी हमें श्रीमद देता है उस श्रीमद का पालन करना जरूरी, जो श्रीमद का पालन करता है उसको ही बाबा प्यार करता है। हमें बाबा ने कितनी सारी नियम बनाए, एक तो ईश्वरीय नियम है मर्यादाएं हैं मैनर्स हैं उसको पालन करना है। जैसे कोई माँ बच्चों को प्यार करते है कब करती है, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को आकर के कहता है मम्मी 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 किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा करके आया नहीं करके, बोलेगा तुम चिल्लात्र में आई, ठीक हो, अच्छे जाएगी जाकर दो थप्पड़ लगा देगी, तुमको मैंने कितना अच्छा कहा तुम गंदा होकर के। इसी तरह बाबा भी हमारे कौन है, मां है। रोज सवेरे कितनी अच्छी डायरेक्शन देते, बच्चा आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, कितनी डायरेक्शन दिया। और शाम को आकर के हम सारा दिन हम बाहर जाते हैं, उन डायरेक्शन को भूल जाते हैं, मन मत पर मत करके शाम को आते हैं। जैसे बच्चे शाम को आते हैं मम्मी मम्मी करता है, हम भी आकर के योग में बैठ करके बाबा बाबा करते हैं। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परमधाम से देखता है, मैंने जो उसको कहा करके आया नहीं करके, बोले तुम चिल्लाते मैं आई, ठीक। फिर कहते पता नहीं योग में बाबा प्यार ही करता नहीं, क्यों नहीं करता, दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर मेरे से कुछ भूले हुए है। जैसा बच्चा जब शाम को आता है मम्मी के सामने, जैसे मम्मी के सामने आता है तो क्या करता है, ऐसा करके ऐसा चीजें आंके नहीं, मम्मी समझ जाते इसने जो कहा वो किया नहीं। इसी तरह हम भी शाम को जो योग में बैठते प्यार जब नहीं मिलता था हमारा चेहरा भी। इसलिए जो बाबा ने श्रीमत दिए है उस प्रमाण हमें चल के आना है, तब हमारा योग में बाबा बहुत प्यार करेगा, योग की अनुभूति होगी। तो योग का अनुभव करने के लिए ये भी धारणा करनी है, पहले आत्माभिमानी बनने की धारणा, दूसरी बताई परचिंतन से मुक्त बनने की धारणा, तीसरी बताई श्रीमद प्रमाण चलने की धारणा, चौथी धारणा है हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, संकल्पों को कम चलाना है। क्योंकि योग का बहुत बड़ा कनेक्शन है संकल्प से, जितने हमारे संकल्प समर्थ हैं, जितने संकल्प पॉजिटिव हैं, उतना हमारी योगयुक्त स्थिति बनती है। आत्मा की शक्ति बढ़ने का आधार है पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प। मुरली के आधार से संकल्प जो चल, जो मुरली हम सुनते हैं उस प्रमाण हमारे समर्थ संकल्प हो रहे हैं। ये क्यों कर, ये क्यों होता है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, अगर योग में बैठेंगे वेश संकल्प होंगे तो योग कहां लगेगा। योग में बैठेंगे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। अगर ऐसे वे संकल्प हैं तो योग में क्या अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने टोटल जो ब्रह्मा कुमारी का जो बाबा का ज्ञान है संकल्प को समर्थ बनाने के लिए ज्ञान है, पॉजिटिव सोचने के लिए ज्ञान है। आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे ही पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। अगर पति ने मुझे तंग किया तो भी मेरे संकल्प ना चले, उस क्यों तंग किया, क्योंकि ताली का भी एक हाथ है, ताली के लिए कितना चाहिए, दो अच्छे। अगर मेरे साथ जो वर्तमान में जो कुछ व्यवहार हो रहा है, जो भी घटना आ रही परिस्थिति आ रहे हैं, मेरे कर्मों के आधार से आ रहे हैं, इसलिए मुझे उस समय संकल्प नहीं चलाना, पॉजिटिव रहना, और तब जाकर के कर्म योगी स्थिति रहेगी और बैठ करके भी योग लगेगा। इसलिए संकल्पों को कम चलाना, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा रिपीट हो रहा है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और जितना संकल्पों को बचाएंगे, अपने ऊर्जा को बचाएंगे, उतना आपका योग युक्त स्थिति आप बना सकेंगे, आपका योगी जीवन चलेगा। इसलिए संकल्प को बचाने की कला सीखनी है, ये धारणा करनी है। पांचवी धारणा है, अगर मुझे योगी जीवन जीना है, मुझे सारा दिन सबकी दुआएं लेनी है, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे मुझे कोई बद्दुआई दे, जिसे मेरे कारण किसी के संकल्प चले, क्योंकि दुआएं परमधाम जाने का विमान है। परमधाम जाने का विमान क्या है, दुआएं। अगर ये विमान ही नहीं आपके पास तो आप परमधाम में कैसे जाएंगे बाबा के पास। समझे कोई सास है बहू को तंग करके झगड़ा करके आकर के योग में बैठी है, अब बहू के संकल्प चल रहे हैं और ये ऊपर उड़ रहे, कैसे जाएगी ऊपर? ये बाबा हमें को ये सेवा करने के लिए, सेवा के लिए जो साधन दिया है, ये सेवा भी किसी लिए योग युक्त स्थिति बन, क्योंकि सेवा करने से दुआएं मिलती है। अगर कोई अंधा है उस अंधे को अगर हम रास्ता दिखाते हैं कितना दुआएं देगा। अगर किसी को हम जो कोई आत्मा भटक रहे इधर उधर उसको बाबा का सही रास्ता दिखाया कितना आपकी दुआएं देंगे आपको। इसलिए तो दुआएं जितनी होगी उतना आपके पास योग आपका लगेगा। इसलिए मैं दुआएं लेनी है, मेरे कारण किसी का संकल्प ना चलिए ध्यान दे। छठी धारणा है, अगर मुझे योग युक्त बनना है सारा दिन मुझे स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहना है। जितना सारा दिन आपकी इंद्रिया आपके वश में रहेगी, हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेंगी, आंखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, मन से क्या सोचना है, ये सारे इंद्रियों के लिए नियम है। अब हर इंद्रिया अपने अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी, शाम को जब योग में बैठेंगे योग अपने आप अच्छा लगेगा। आंखों ने गलत देखा है, कान ने गलत सुना है, योग में बैठेंगे वही याद आता है, योग कहां लगेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, जैसे ब्रह्मा बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे, इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज सवेरे इंद्रियों को पहले ऑर्डर देना है कि आज गलत देखना नहीं, गलत सुनना नहीं, और फिर रात के समय चेक करना है, अगर कोई कर्म इंद्रिया गलत देखती है सुनती है उसको सजा देना। लेकिन हम कभी ना ऑर्डर देते ना सजा देते किसी को। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सर बाजी टके सर खाजा, तो योगी जीवन कैसा बनेगा फिर। इसीलिए बाबा कहते स्वयं को बदलो, स्वयं का परिवर्तन करो। स्वयं का परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। चैरिटी बिगेंस एट होम, आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है, तो हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त चलाना। और जो ये धारणा करता है उसका योग क्यों नहीं लगेगा, अपने आप योग लगेगा। लेकिन हम इसके तरफ सारा दिन ध्यान नहीं देते हैं और फिर योग में बैठते तो योग में जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी की धारणा, ये छठी बात है। सातवीं बात है, अगर हमें योगी जीवन बनाना है, निरंतर योगी बनना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। ये संस्कार अगर गलत संस्कार हो गए तो आपको योग में डिस्टर्ब करेंगे। जैसे पहले जमाने में कुछ एक कंप्यूटर में पेज मेकर फाइल आती थी, पेज मेकर जो कंप्यूटर चलाने जानते हो उनको पता है, कंप्यूटर के पेज मेकर फाइल आते हैं, अगर पेज मेकर को फाइल को खोलना है उसकी कुछ सपोर्ट फाइल होती है, अगर उसको डिलीट करेंगे पेज मेकर क्या खुलेगा। इसी तरह हमें योग लगाना है तो ये कुछ सपोर्ट बातें हैं, आत्म अभिमानी बनना, परचिंतन से मुक्त बनना, श्रीमत प्रमाण चलना, दुआएं लेना, ये सब चीजें की सपोर्ट बातें हैं। अगर ये आप धारणा में नहीं करेंगे तो योग लगेगा कहां। इसलिए योग निरंतर योगी बनने के लिए ये बातें जरूरी, इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। अगर हम कोई संस्कार के वश हो जाते हैं तो इंद्रियों के वश हो जाते हैं, संस्कार के वश होने से की कमाई हमारी चट हो जाते हैं। संस्कार जो हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता फिर। इसलिए हमें जो मेरे संस्कार हैं, कौन से संस्कार के वश हो जाता हूं, उस संस्कार का हमें नॉलेजफुल बन करके, बाबा ने तो जो मुरलियां चलाई हैं मुझे लगता है हर विकारों के प्रति बाबा की मुरलियां चलिए, काम के ऊपर मुरलियां चलिए, क्रोध के ऊपर मुरलियां चलिए, पर चिंतन का संस्कार आएगा तो उसके लिए अभिमान का संस्कार, हर टॉपिक के ऊपर बाबा ने मुरलियां चलाई। जैसे हम डिस्पेंसरी में जाते हैं, फार्मेसी में जाते हैं तो दवाई कौन सी मांगते हैं, कौन सी मांगते हैं, जो आपकी बीमारी है वही दवाई मांगते हैं ना। इसी तरह हमें भी जब मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते समय मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की काफी सारे टेबलेट्स है, तो हमें वही पॉइंट्स लेने जो मेरी प्रॉब्लम्स है। उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति अपनाई, वो अपना करके अपनी बीमारी को ठीक करना। अगर ये संस्कार मेरा बार बार रिपीट होता है तो मेरी योग युक्त स्थिति नहीं रहेगी, योग में डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अपने संस्कार को बदलना। और वैसे तो बाबा कहते हैं, बाबा ने तो अभी इस बार स्पष्ट किया, हम कहते हैं मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरे संस्कार ही ऐसे। बाबा कहते हैं तुम्हारे पुराने संस्कार नहीं है, तुम्हारे अनादि संस्कार, आदि संस्कार वो अलग है, ये तो बीच के संस्कार है, ये माया के संस्कार है, और अभी के ब्राह्मण संस्कार ये बीच में आए हुए संस्कार, काम क्रोध के बाद में आए हैं संस्कार। लेकिन आपके ओरिजिनल क्या है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये वो पुराने संस्कार को याद करो तो ये बीच के संस्कार निकल जाएंगे। मेरे पुराने संस्कार वो है, मेरे उस असली संस्कार वो है, ये नहीं मेरे संस्कार। ब्राह्मण संस्कार को याद करो, तब ये संस्कार जितने बदलेंगे उतना योग युक्त स्थिति बनेगी। योग में डिस्टर्ब करने वाले संस्कार है। अगर मुझे योग युक्त बनना है, आगे की धारणा है सोमानों के अभ्यास करो, और जितना सोमानों में रहेंगे योग युक्त स्थिति बनेगी। और सोमान को केवल रिपीट नहीं करना, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, नहीं, उसकी विजन बनाना, दृश्य बनाना। जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। सोमान में रहने से आत्मा मन बुद्धि भटकना बंद हो जाता है, उसको कोई ठिकाना मिल जाता है। और सोमान कोई किसी अथॉरिटी बाबा ने मुझे दिया हुआ है, इसलिए मैं जो बाबा ने सोमान दिए हैं, जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, योग युक्त स्थिति रहेगी। अगर योग युक्त स्थिति बनानी है, निरंतर योगी बनना है, हम योग के लिए कुछ रोज नवीनता करनी है। हमें योग सब्जेक्ट बोर क्यों लगता है? जैसे कोई आपको रोज आलू की सब्जी खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे क्या रोज आलू आलू। अगर आलू में कभी फली डालो, आलू में गोभी डालो, आलू में पत्ता गोभी डालो, गाजर डालो, तो मटर डालो, तो रोज क्या है, हाय आलू, लेकिन नवीनता लगेगी। इसी तरह पुरुषार्थ में भी हमें नवीनता करनी है। आज मुझे इस सप्ताह में मुझे फरिश्ते स्थिति का अभ्यास करना है, अगले सप्ताह में मुझे बिंदु स्वरूप का अभ्यास करना है, अगले सप्ताह में मुझे देवता स्वरूप का अभ्यास करना है। कितनी सारी वैरायटी है, और जितना आप वैरायटी प्लानिंग बनाते उतना योग में इंटरेस्ट आएगा। हम क्या करते हैं, वैरायटी नहीं करते, तब जाकर के योग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक एक महीने का हमें प्लानिंग बनाना है। चलो थोड़ा
को अब याद। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में अब तुम्हें आना है,
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है,
धाम में तुम्हें जाना है।
बस 10 मिनट में पूरा करता हूं मैं तो बात चल रही थी। योग का हमने महत्व समझा, योग का महत्व बहुत है, साथ में बताया योग के लिए मन बुद्धि इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मन क्या है, बुद्धि क्या है, इसके बारे में चर्चा किया। उसके साथ साथ में योग की विधि, जो एक मोबाइल का एग्जांपल मैंने आपको बता करके बताया, और उसके साथ में योग के लिए क्या क्या धारणा है वो भी बताया, 8-10 बातें बताई। और उसमें से भी सबसे महत्व का है अमृत वेला का योग। अमृत वेला योग जिन्होंने अच्छा किया उसका सारा दिन योगी जीवन बना रहता है। तो अमृत वेला कौन कौन करते हैं? अच्छा, सब लोग करते हैं, लेकिन अमृत वेला अगर चुपचाप आपका वीडियो बनाया जाए, सवेरे दिखाया जाएगा तो दीवार के सारे बैठे मुकला के बना, 2 बार मच्छर अंदर भी है और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं, हमें एकदम अलर्ट होकर के, अमृत वाला अलर्ट होकर के करना। और आजकल माया क्या करते हैं ब्राह्मणों में, आलस, आलस और अलबेलापन के रूप में। और जिसकी अमृत वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो भी सारा दिन फिर आत्मिक स्थिति नहीं रहती, और उसके कारण कर्म योगी की स्थिति भी नहीं रहेगी। इसलिए हमें अमृत वाला क्या करना है, अलर्ट होकर के करना है। क्योंकि अमृत वाला सवेरे सवेरे बाबा आपके पास आता है, बाबा आपको, जैसे अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, उसको कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, लेकिन क्या कहते हैं, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह हम भी आलस में ऐसे होते हैं, जो बाबा आता है तो भी हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं यहां। इसीलिए अलर्ट होकर के अमृत वाला करना, सवेरे उठते ही आलस को मार देना, एक्टिव होकर के बैठना, आंखें खोल करके बैठना, और जिसकी अमृत वाला अच्छी सारा दिन उसका अच्छा जाएगा। बाकी कर्म योगी स्थिति भी बनानी है। कर्म योग करते समय ये समझो कि बाबा ने, हम गृहस्थी नहीं है, क्या है, ट्रस्टी है। आप सभी का एड्रेस क्या है, मधुबन निवासी है। वहां से आपको कहां भेजा है, यहां से बाबा ने भेजा है। पिछले जन्म में आप गुजरात के थे, अहमदाबाद के थे, लेकिन अभी कहां गए, यहां से। तो ये हमारा, ये सदा याद रहे। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, किसी लिए भेजा था, सीता को ढूंढने के लिए भेजा था। वो जाकर के नहीं कहता अरे राम के पास तो कुछ ही नहीं है, यहाँ कितना बगीचे है, सोने की लंका है, चलो यहाँ ही डेरा डाल दो, ये नहीं कहा। इसी तरह बाबा ने आपको कहीं वहां 4-5 मंजिल बिल्डिंग बना करके, बड़ा बिजनेस बड़ा करके, एटीएम में और पैसा बढ़ाने के, इसके लिए नहीं भेजा आपको, वहां आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है। एक भाई आकर के कहता है भाई जी मैं तो, आप लोग तो कितने भाग्यशाली है, देखो आप मधुबन में रहते हैं, हम तो बिल्कुल यहाँ माया की नगरी में रहते हैं। हमने कहा आप भाग्यशाली पावरफुल है, इसीलिए तो भेजा है। हनुमान को लंका में भेजा था, क्यों, बाकी बंदर थे, राम को पता है जाकर मार के खा के आएंगे, हनुमान जीत के आएगा, इसलिए हनुमान को क्यों भेजा। तो आपको भेजा मतलब आपको गृहस्थ में रखा है, पावरफुल है, कमजोर होते थे यहीं रख देते फिर, इसलिए कभी नहीं समझना कि आप कमजोर हैं। बॉर्डर पर आने वालों को थोड़ी कमजोर थोड़ी रखा जाता है, बॉर्डर पर रहने वालों को अच्छे अच्छे सैनिकों को रखा जाता है, इसीलिए हमने अपने सोच को कमजोर बनाया है। हम तो ग्रह में रहते हैं, हम तो ये नहीं कर सकते। नहीं, अब शक्तिशाली कल पहले भी आपने लंका को जला करके अनेक सीताओं को वापस लाया था राम के पास मिलाने के लिए, इसलिए मैं कमजोर। जब भी कहीं दुकान में जाते, दुकान में नहीं जा रहा हूँ मैं सीताओं को ढूंढने के लिए, मैं हनुमान महावीर जा रहा हूँ, इस स्थिति में जाना है सोमान में, तो अपने आप कर्म योगी की स्थिति। और बच्चे मेरे कोई नहीं है, ये सब किसके है? बाबा के हैं, बाबा के बच्चे। जैसे सेंटर पर बहने रहती है तो आप लोगों को ये थोड़ी सा कि हमारे मेरे बच्चे हैं, नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं, इनकी सेवा करने के लिए मैं मधुवन से आई हूँ, ये भान रहता है ना बहनों का। इसी तरह घर के जो भाई बच्चे हैं मेरे नहीं है, कभी हम बाबा को कहते बाबा मेरा बच्चा मानता ही नहीं, बाबा कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख ले। बाबा को कहना कि बाबा जिस बच्चों की सेवा करने के लिए मुझे आपने भेजा था, आजकल वो चंचलता करता है, फिर बाबा मदद करेगा। हमने दुकान मेरा समझा, बच्चे मेरे समझे, जमीन मेरी समझी, और इसीलिए फिर कर्मयुग की स्थिति कहा रहेगी। इसीलिए मैं एक मधुवन से आया हूं, यहां मेरा मुख्य काम है सीताओं को ढूंढने का, और सीताओं को ढूंढना तो भूल ही गए, बिजनेस बढ़ाने में लगा पड़ा है, और कैसे प्रॉपर्टी होती रहेगी, ये तो सब नष्ट होने वाला है, ये तो पेट को चाहिए दो ही रोटी। इसलिए साक्षी होकर के हमें जिस काम के लिए गए वही करना है, इसलिए तब जाकर के कर्मयोगी स्थिति अपने आप आएगी। जैसे वो सुनाते ना, वो नारद, एक बार नारद को किसी ने कहा कि नारद ने जाकर के पूछा विष्णु जी को, सबसे ज्यादा आपको कौन याद करता है? तो क्या बोला, मुझे खेती वाला याद करता है। कहते ये कैसे हो सकता है, मैं हमेशा नारायण नारायण बोलता हूँ, नहीं मुझे खेती वाला करता है। तो कहते जाओ देख क्या हूं। तो नारायण क्या करता है, वेश बदल करके जा करके थोड़ा सा बैठा, तो खेती वाला आया, थोड़ा दो चार नाम लिया भगवान की, कहते उसके बाद खेती का काम किया, फिर बैठ गया, फिर दो तीन बार। तो नारद को तो गुस्सा आया, कहता उसने दो तीन बार ही याद किया, मैं तो सदा नारायण नारायण कर, कहता वही करता है। तो कहा कि ठीक है, आप मेरे पास एक बार आना, और एक कटोरी में उसको कहते तेल दिया और दीपक जलाकर दिया, कहा कि चक्कर लगा के आना, लेकिन याद रखना ये तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझने नहीं चाहिए, अगर तेल गिरेगा बाती बुझेगा तो आपको सजा मिलेगी। तो नारद वो लेके जाता है बिल्कुल ध्यान से, तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझने नहीं चाहिए, उसको याद करता है, और करते चक्कर लगा के आया। तो नारायण ने पूछा अच्छा, कहते देखो मैं विजय बन के आया हूं, कहते अच्छा लेकिन इस समय तुमने नारायण नारायण कितना बार बोला? बोला मैं तो भूल गया, बोला उस खेती वालों को मैंने जिम्मेवारी दिया है, एक जिम्मेवारी दिया खेती का काम, वो जिम्मेवारी निभाते हुए भी चार पांच बार याद किया, और आपको एक जिम्मेवारी दी वो करते हुए आपने एक बार भी याद नहीं किया, तो आपसे भी ज्यादा जो कर्म करते जो याद करता वो पावरफुल है। इसलिए कर्म में हमें बाबा को याद करना ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ, इसलिए कर्म योगी बनकर के, और जितना कर्म में बाबा को याद करेंगे फिर कर्मों की झंझट वाली बातें, आज हम भारी बनते हैं क्योंकि कर्मों में ऊपर नीचे होता है, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सारा टेंशन भी आपको योगी बनने नहीं देगा। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनो, कहीं भी जरो हल्के बनो, जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ता बनो, और जो ये स्थिति है वो कर्म योगी बनता है। तो हमारा योगी जीवन बहुत ही प्यारा जीवन है, और योगी जीवन का आनंद लेने के लिए हमें खास योग के ऊपर अटेंशन देना है, और जितना योग के ऊपर अटेंशन देंगे हमें संगम युग की अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, हमारे अंदर दैवी गुण दैवी शक्ति आएगी, हमारा जीवन इस कलयुग की तनावपूर्ण वातावरण में रहते भी हर्षित मुक्त हेल्दी वेल्दी और सदा हैप्पी रहेगा, ऐसा में योगी जीवन जीना है। और उसके लिए योग के ऊपर अटेंशन वो कैसे करना है उसके लिए धारणा, कई बातें हमने चर्चा की, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, ओम शांति।
जगते रहे।